जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा, जय प्रभु पदा श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमई की, झूलन यात्रा महोत्सव की। तो आज के इस 15 अगस्त के दिन झूलन यात्रा के उत्सव में आपका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भौतिक दुनिया में सब लोग दुख भोग रहे हैं और कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है। जो लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं वो भी दुख भोग रहे हैं, और जो भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे हैं वो भी दुख भोग रहे हैं। क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में जी रहे हैं शरीर में, ये दुख का सिलसिला चलता रहेगा। इसमें से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। फर्क केवल इतना ही है कि जो लोग भगवान के नाम का जप करते हैं उनको इस दुख की अनुभूतियाँ कम होती है, क्योंकि उनको आनंद का अनुभव भी होता है, तो आनंद के अनुभव की वजह से दुख की अनुभूतियाँ कम होती हैं। लेकिन दुख नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। दुखों को वो अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं, समझ बूझ के साथ में दुखों का सामना कर सकते हैं और दुख भरी ज़िंदगी में भी खुश रह सकते हैं। लेकिन स्थायी भाव इस दुनिया का है दुखालयम अशाश्वतम, ये हमको सबको पता होना ज़रूरी है। दुनिया में लोग केवल दो चीज़ की प्रार्थना मन में करते रहते हैं, एक है दुख ना हो और दूसरा है कि सुख होता रहे, है ना, सुख मिलता रहे और दुख नहीं आए। ये सब लोग इसके लिए काम करते रहते हैं। एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड, जो आए हुए दुख हैं उसको कैसे मिटाएं और जो नए सुख है उसको कैसे लाएं, ये दो काम में सब बिजी रहते हैं, भक्त भी और न भक्त भी। लेकिन वास्तव रूप में हमको पता होना चाहिए कि इस भौतिक दुनिया में सुख नहीं है और दुख ही दुख है। और जब ये अनुभूति मन में पक्की हो जाती है ना, तो एक आपका पोजीशन बनता है सुखी होने का, एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। इस व्यक्ति को पता है कि इसमें ढूंढ कर भी सुख नहीं मिलने वाला है, तो उसके एक मन की तैयारी होती है। और उसके बाद में जब वो भगवान के नाम का सहारा लेता है तो उसके बड़े ही आनंद की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। तो कितने प्रकार के दुख हम देखते हैं, हम कितने लोगों को कई जगह पर मिलते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कितने लोग कितना प्रकार का दुख भोग रहे हैं। जैसे कि नई शादी हो रही है, नहीं जम रहा है उसको, सब तरह से परेशानी है। किसी के घर में पिताजी को कैंसर है, एक ही अर्निंग मेंबर है, वो कैंसर से अभी गुजर गया। फिर इनकम साधन नहीं है, ना घर है, ना ज़मीन है, ना कुछ है। एक लड़की है 20 साल की, जिस पर 6 लोगों का भार है। अभी सब मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, जिनको मैं मिलता हूँ, मिल रहा हूँ। इसके घर में माता इतनी बुढ़ी हो गई है कि वो बार बार गिर जाती है, बार बार कुछ दिन समझता नहीं, रात कहाँ है, दिन कहाँ है, कौन सा समय चल रहा है, ब्रेकफास्ट खाना है कि लंच खाना है, बच्चों को पहचानते नहीं है। कई प्रकार के अनंत प्रकार के अनंत विविध प्रकार के दुख हैं दुनिया में। और ऐसे ज़िंदगी में हमको जीना ही है, ऐसा नहीं कि हमको यहाँ से भाग सकते हम लोग, तो परेशान हो गए भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जहाँ भी भागेंगे वहाँ हमारे कर्म भी हमारे साथ भागेंगे, और जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ हमारे कर्म हमको उसका रिएक्शन देंगे। कहाँ भागेंगे, हरे कृष्णा। वो होता है ना, वो सर्कस में देखो एक बड़ा गोल होता है, पता है आपको, बहुत बड़ा गोल होता है, तो उसमें कहाँ भी भागेंगे आप, तो कहाँ भाग रहे हैं आप, गोल गोल में भाग रहे हैं ना, किधर भागेंगे, गोल में बंद है और गोल में भाग रहे हैं, कहाँ भागेंगे। उसी तरह से ये दुनिया का स्थायी भाव है कि यहाँ पर आप कहीं भी भागो, हमारे कर्म हमको नहीं छोड़ेंगे और उसके द्वारा प्राप्त होने वाला दुख भी हमको नहीं, हम छोड़ सकेंगे उसको। तो जीव की ऐसी करुणामय स्थिति है दुनिया में कि वो इतना सारा मेहनत करने के बाद भी दुखों को ही प्राप्त करता है। फिर क्या करें उसके लिए, करें क्या? तो सबसे पहले भगवान उसका उपाय करते हैं, भगवान अपना पवित्र नाम भेज देते हैं, लो इसका सहारा लो, इसी में मैं हूँ। फिर कभी खुद आते हैं, सब लीला करते हैं, अपने धाम को प्रकट करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं सुंदर उपदेश के साथ में। हाँ, जैसे कि होता ना जगन्नाथ रथ यात्रा में, कैसे होता है इतनी गर्म गर्मी होती है, फिर कुछ लोग फवारा करते हैं अपने ऊपर, कम से कम उतना तो समय के लिए शांति का अनुभव होता है। वैसे ही संत लोग सुंदर उपदेश लेकर आते हैं और हमारे दुखों को बुझाने का प्रयास करते हैं। नदियाँ आती हैं, माँ गंगा देवी नदी के रूप में आते हैं, यमुना देवी नदी के रूप में आते हैं, दुखों का बोझ कम करने के लिए। तो भगवान अनंत दयालु हैं और वो जीव के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। जीव को इतना कष्ट हो रहा है तो कैसे जीव को कष्ट से मुक्ति दिला दें, कैसे जीव को अनुभूति दिला दें कि इसमें सुख नहीं है, सुख मेरे चरणों में है, मेरी सेवा में है, मेरे भक्तों की सेवा में है। तो खुद आते हैं और मेहनत करते हैं। तो ये झूलन यात्रा का जो महोत्सव है ये उन्हीं की कृपा का एक लक्षण है, एक सिम्टम है इसका। अनंत सिम्टम्स जो होते हैं उनके करुणा के, उसके अंदर एक लक्षण ये है। वो कहते हैं गौलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हाँ, गौलोक क्या है? गौलोक के अंदर एकदम यहाँ से विरुद्ध परिस्थिति है, वहाँ पर कोई दुख नहीं है, वहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, आदि भौतिक क्लेश नहीं है, आदि दैविक क्लेश नहीं है। वहाँ पर अधिक वर्षा नहीं होती है, अधिक ठंड नहीं होती है, अधिक गर्म नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है जो यहाँ पर होता है। और वहाँ पर केवल प्रेम ही प्रेम का प्राकट्य होता है, सब लोग प्रेम से भरे हुए हैं और सब लोगों का आदान प्रदान केवल प्रेम के विषय में होता है। प्रेम की लहरें उमड़ती हैं, प्रेम की लहरों का आनंद हर जीव को प्राप्त होता है। कितना सुंदर होगा वो, तो सोचने से भी कितना अच्छा लगता है कि हर व्यक्ति प्रेमी है, कोई किसी का द्वेष नहीं करता है, हर व्यक्ति का आदान प्रदान प्रेम होता है, हर मुख से जो निकलता है शब्द वो गीत होता है, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, और हर कदम जो चलते हैं वहाँ पर वो डांस होता है, नृत्य होता है, हर चीज़ अमृत है, अमृत नेक्टर है। ये सब हम चाहते हैं, एक्चुअली हम चाहते हैं कि हर वाक्य हमारा प्रेम भरा हुआ गीत हो, हर कदम हमारा नृत्य जैसा सुंदर हो, हर आदान प्रदान प्रेम की पूंजी हो, सब जान चाहते हैं हम लोग, वी वॉन्ट वॉन्ट। और वो जो धाम है उसका सार क्या है? उसका सार है प्रेम, प्रेम भरी लीलाएं उसका सार है। बाकी उसका प्रकटीकरण अलग अलग रूप से होता है, लेकिन अगर सार पूछा जाए तो गोलोक वृंदावन क्या है, तो प्रेम, साक्षात प्रेम है वो। और वो प्रेम भगवान का जीव के प्रति, जीव का भगवान के प्रति, उसका प्रकट्य है जो हर जीव के लिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, नेचुरल लाइफ फॉर द सोल। तो वो प्रेम जो है भगवान का हमारे लिए, हमारा भगवान के लिए, वो गौलोक धाम का सार रूप जो प्रेम है वो पृथ्वी पर भगवान के नाम में प्रकट होता है। तो वो भगवान का नाम जो यहाँ पर सोलाक्षरी महामंत्र के रूप में प्रकट होता है, और उसी नाम के अंदर, उसी सोलाक्षरी महामंत्र के अंदर गौलोक धाम भी है, भगवान भी है, हम भी है, हम दोनों का प्रेम पूर्ण आदान प्रदान भी है, लीला भी है उसके अंदर, धाम लीला नाम रूप सब कुछ उसके अंदर है। कभी हमने सोचा ऐसे कि जो हम जो रोज सुबह बोर होके जप करते हैं सोते सोते उसके अंदर क्या है पता है आपको? जिसको लेते ही हमारी नींद शुरू हो जाती है, तब तक हम फ्रेश रहते हैं, जब माला हाथ में लेते हैं हमको नींद आने लगती है। वो महामंत्र जो है वो स्वयं भगवान है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है, भगवान का धाम है, और भगवान का हमारे प्रति जो प्रकट किया हुआ प्रेम भी वही है। और उसी के माध्यम से, उसी के जप के माध्यम से वो सारी अनुभूतियाँ प्रकट भी होनी है। हमको समझ में आना है उसके माध्यम से कि ये धाम भी भगवान का नाम है, लीला भी भगवान के नाम में सम्मिलित है, जिसके नाम के जब से वो लीला प्रकट होने वाले आपके हृदय से उत्स्फूर्त रूप से, ये बहुत अच्छी भावना है। और इस भावना से हम कल सुबह का जप करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या अनुभूति मिलेगी आपको। इस भाव से आप जप कीजिए कि इसी में धाम सम्मिलित है, इसी में लीला भी सम्मिलित है, इसी में रूप भी सम्मिलित है भगवान का, स्वयं भगवान इसके अंदर सम्मिलित है, और जो प्रेम के लिए हम तड़प रहे हैं वो भी इसी के अंदर समाया हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति इस नाम का सहारा लेते हैं वो इस दुनिया के बहुत गहरे दुखों में डूबते हुए भी आनंद का अनुभव करते रहते हैं। ये बहुत अद्भुत चीज़ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है लेकिन उसका अनुभव होता है। भयंकर दुख होने के बाद भी आप बहुत आनंदी रह सकते हो, ऐसे नहीं कि आप विकृत हो, इट्स नॉट दैट यू आर परवर्टेड पर्सनैलिटी, अरे क्या है सब लोग रो रहे हैं हंस रहा है पागल आदमी है, ऐसा नहीं है। वो दिव्य आनंद जो होता है वो दुनिया के सुख और दुख के परे होता है, दुनिया के जो अनुभूति होती है ना सुख और दुख की, उसके परे आनंद होता है। और आनंद के स्थिति में हम हमेशा रह सकते हैं, अगर कोई भयंकर घटना भी हो गई है या भयंकर सुख की घटना भी हो गई है उससे विचलित ना होते हुए भी हम आनंद के स्वरूप में रह सकते हैं, अगर हमने भगवान के नाम का सही भाव में सहारा लिया है। तो उसी भगवान के नाम के 16 अक्षरी मंत्र के जप में से ये लीला भी प्रकट होती है, होली की लीला, झूलन की लीला, रास लीला, गौचारण लीला, सख्य लीला, मधुर लीला, सब प्रेम लीलाएं प्रकट होती है उससे, वो उसका उगम है, क्योंकि उसी में भगवान ने अपना सारा अस्तित्व जो है वो समा दिया है और आपके लिए भेज दिया उसका गिफ्ट। गोलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, सारा जो आपके लिए आवश्यक है वो इसमें भरा हुआ है, ऐसी कैप्सूल है कि आपकी बीमारी के लिए परफेक्ट दवा के रूप में इसमें डालकर आपको दिया गया है, सबको लेना है उसको श्रद्धा के साथ। और जब वो हम लेते हैं तब ये लीला क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका हमारे जीवन में रेलेवेंस क्या है, तो हमारे समझ में आता है। बेसिकली सारी लीलाएं भगवान की जो है वो प्रेम और सेवा, इन दो स्थायी भाव पर आधारित है। एक है उनके प्रति प्रेम और दूसरा उनके प्रति सेवा भाव, उसी के माध्यम से प्रकट होती है लीलाएं भगवान की जो होती है। ये हमारे भोग के लिए नहीं होती है कि इसके हमको आनंद मिलेगा, बहुत मज़ा आ जाएगा हमको इसके अंदर, ये भाव कभी भी नहीं होता है। ऐसा भाव से जो उसमें आनंद है वो भी हमको प्राप्त नहीं होता है, वो भी उसको भी वंचित हो जाते हैं हम लोग। लेकिन जब एक सेवा के रूप में इस लीलाओं को हम देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं उसके बारे में सेवा भाव में, तो उसका दिव्य आनंद हमारे हृदय में प्रकट होता है। भगवान भी ये लीला करते हैं ना तो वो अपने भक्तों के सामने हारने के लिए करते हैं। प्रतियोगिता होती है, होली में होती है, झूला में होती है, और किसी में होती है, सख्य लीला में होती है, लेकिन आप देखेंगे बार बार भगवान उसमें हारने में बड़ा आनंद लेते हैं। अपने मित्रों से कुश्ती में भी हार जाते हैं, भांडीर वन में गोपियों से कुश्ती खेलते हैं, मालूम है आपको भांडीर वन में एक 8वीं लीला है मल्ल लीला, उसमें सखियों के साथ कुश्ती खेलते हैं और सब सखियाँ उनको हरा देती हैं। इमेजिन भांडीर वन में ये लीला है, वहीं पर भी हार जाते हैं। अभी एक जिसने एक हाथ से उठाकर पहाड़ जैसे अरिष्टासुर को फेंक के मारा हुआ है, इतने बड़े पर्वत को उठाया एक उंगली में, वो इतने नाजुक कोमल गोपियों से कैसे हार सकते हैं, लेकिन वो हारने की लीला करते हैं। होली में भी जानबूझ के हार जाते हैं, उनको फिर अरेस्ट करते हैं, उनके हाथ मोड़ लेते हैं, पूरा काजल भर देते हैं आँखों के अंदर, उनकी चुनरी ओढ़ लेते हैं, गंदे गंदे शब्द बोलते हैं उनको, क्या क्या बोलते हैं उनको यहाँ बोल नहीं सकता मैं। नहीं बोल सकते, वो बोलने वाला जो है वो बोल दिया होता मैंने अब तक। लेकिन भगवान उसमें कितना आनंद मानते हैं। और विशेष रूप बात यह है कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, कैसे हमको ऐसे लीलाओं में अप्रोच करना है, इसलिए बता रहा हूं मैं कि भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, इन लीला को करने वाले वो किस भाव में इसमें आ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल होली में क्या होता है ना, होली में ना एक होता है फगुआ, फगुआ फगुआ यानी फागुन महीने का उत्सव का एक नाम दिया फगुआ। जब भगवान हारते हैं ना तो हारने वालों को दंड देना पड़ता है, इट्स लाइक पेनल्टी। और उसमें वो दागिना आईना मतलब क्या अलंकार या भोजन की वस्तुएं या वस्त्र ऐसे अनेक जो वस्तुएं हैं वो देना पड़ता है। अगर आप चैंपियन हो तो आप दंड लेकर नहीं आएंगे ना, आप मालूम है आप जीतने वाले हो, क्यों दंड लेके आना है, दंड उनको लेके आना है हारने वालों को। लेकिन नंदनगांव से पूरा बैलगाड़ियों से भर भर के दंड लेकर आते हैं पहले से ही, पूरे मालूम है उनको कि अपने को हारना ही है, इसमें हारने को ही आते हो, फगवा लेकर ही आते हैं। और फिर हारते ही सब गोपियों को फगवा देते हैं, किसी को अलंकार, किसी को भोजन, किसी को वस्त्र, किसी को क्या, सबके पैर छूते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, लट भी खाते हैं उसके ऊपर, सबको दंड देते हैं, मतलब दे देते हैं दंड का जो विधान है। इस तरह से हमारे भगवान इस लीला में प्रवेश कर रहे हैं, सोचो आप। तो हमको भी इन लीलाओं के श्रवण करने में, लीलाओं को मनाने में, या लीला के बारे में बोलने में या सुनने में, सब भावना में एक सेवक भावना होनी चाहिए, दास्य भाव होना चाहिए, तब जाकर आपको इसका रहस्य समझ में आएगा। अगर हम अपने भोग के लिए लीलाओं को संपन्न करेंगे अपने घर में, अपने आनंद के लिए और इंद्रिय भोग के लिए करेंगे, तो आप उसका जो बोला यू विल मिस द पॉइंट, आपको जो प्राप्त होना है इसमें से वो भी नष्ट हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं आपको, जब क्षण भंगुर हो जाएगा। लेकिन सब चिरंतन लीलाएं हैं भगवान की, इटर्नल पास टाइम्स, इसमें भी भगवान हारने को आते हैं, क्योंकि झूला के अंदर भी प्रतियोगिता होती है। लेकिन भगवान राधा रानी के सामने अपने आप को नतमस्तक करते हैं, हार मान देते हैं और जो कहा है वो कर देते हैं दंड के रूप में, यही उसका भाव है। हाँ, आचार्य लोग बताते हैं कि इन दिव्य लीलाओं को श्रवण करते समय एक तो मन में आदर भाव होना चाहिए, ऑ एंड रेवरेंस के साथ में सुनना चाहिए, मैं भी उसका एक पार्टिसिपेंट हूँ ये भाव से सुनना नहीं चाहिए, केवल महानता की भावना से, दिव्य भावना से, हाँ ऐश्वर्य भाव से उसको आदरपूर्वक सुनना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू सेवक भाव से सुनना चाहिए, तब जाकर लीलाएँ हमारे लिए समर्पक हो जाती हैं, सार्थक हो जाती हैं, परिपूर्ण रूप से हमारे सामने अपने आप को प्रकट करती हैं। समझो अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ समझो, लेकिन जहाँ जगह जगह जा रहा हूँ वो लोग मुझे मेरे सामने प्रधानमंत्री होने का डिक्लेयर करने के योग्य नहीं है, वो चुप रहेगा, सामान्य वस्त्र में जाएगा, किसी को बताएगा नहीं प्रधानमंत्री हूँ। जब उसके लायक ऑडियंस आएगा तो बताएगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। उसी तरह से भगवान भी उनके सामने वो सब सार प्रकट नहीं करेंगे जो उसके योग्य नहीं है, आपको लगे ऑर्डिनरी लाइक क्या है, माखन चोरी करता है, क्या है भगवान है क्या ये, ऐसा भाव आएगा आपको। तो उनके सामने वो अपना जो रहस्य है वो प्रकट नहीं करेंगे कभी भी, वो कौन है। जो लोग उनके द्वेषी हैं उनको लगेगा कि तो ऑर्डिनरी बालक है, क्या भगवान है क्या, सब चोरी करता है, ऐसे कर रात को नाचता है, क्या क्या करते रहता है, भगवान है थोड़ी। तो उस रूप में उनको अनुभूति देंगे वो। और जो लोग उन पर प्रेम करते हैं उनके लिए प्रकट करेंगे कि वो वास्तव में कौन है, वास्तव में खुद कौन है प्रकट करेंगे, उनके लीलाओं का रहस्य भी प्रकट करेंगे। और ये सारी चाबी जो है ना वो भगवान के महामंत्र के जप के अंदर छुपी हुई है, वो जब हम श्रद्धापूर्वक करते हैं तो ये सारी चाबियाँ खुल जाती हैं, सारा रहस्य भेद हो जाता है, सारा सत्य प्रकट हो जाता है। और भगवान भी बड़े दिल से अपने आप को प्रकट करते हैं उन भक्तों के सामने, वो श्रद्धा रखते हैं, जो सेवा भाव रखते हैं, उसी भाव से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं इन लीलाओं के सामने। तो इसलिए वो सुंदर लीला है भगवान की। सावन का महीना है, बरसात होती रहती है, बीच में धूप आती है, बीच में बादल आते हैं, बीच में बरसात होती रहती है, कभी धूप कभी छांव कभी वर्षा, अच्छे अच्छे फूल सब जगह खिलते हैं क्योंकि पानी बरस रहा है, अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, हरियाली सब जगह छाई हुई है, फल फूलों से प्रकृति समृद्ध हो गई है, मराठी में कहते हैं नटली है, मुझे बहुत अपना अपने आप को सुशोभित कर चुकी है वो, अपने आप का मेकअप कर चुकी है, सुंदर सब चीज़ जो बेस्ट है उसके, वर्षा ऋतु की सहायता से, मृग नक्षत्र की सहायता से, जो अपने आप में बेस्ट है वो, जैसे कि शादी होगी तो एक औरत अपने घर में बेस्ट जितने अलंकार है वो पहन के जाएगी, बेस्ट साड़ी पहन के जाएगी, वैसे सावन के महीने में प्रकृति बहुत सुंदर सज सज के आती है और उसमें अलग अलग भाव प्रकट होते हैं, और उसमें एक भाव है कि भगवान को झुलाया जाए, सब सखियाँ जो है, देखिए कैसे वृंदा देवी है, हमारा तो साल में एक बार करते हैं हम लोग, बिजारी वृंदा देवी हर रोज उत्सवों का आयोजन करती है, एवरी सिंगल डे, इमेजिन। और हमारा कैसा आयोजन है, थोड़ा बहुत कर लिया हमारा उत्सव हो जाता है, लेकिन वृंदा देवी के लिए ना कौन से राग में गाना है वो भी तय करना है, कौन से ताल में नृत्य करना है वो भी तय करना है, कौन से वाद्य कौन बजाएंगे वो भी तय करना है, किस जगह पर लीला करनी है वो भी तय करना है, कौन सा रंग वहाँ प्रधान होना चाहिए, समझो अभी आज पीला रंग होना चाहिए तो वहाँ पर पीले रंग के फूल, पीले रंग के पेड़ है, सब कुछ हर एवरीथिंग ड्रेस पीला, वो प्रधान कौन सा रंग होगा उसको सारे प्रकार का श्रृंगार उस रंग में करना है, कौन सा रंग भोजन देना है, किस प्रकार का भोजन देना है युगल जोड़ी को, कौन परोसेगा, कौन खाएगा, कौन खिलाएगा, कौन नृत्य करेगा, कौन गाएगा, इसका सारा आयोजन करना पड़ता है। फिर कौन कौन से सखियों का वृंद जो है वो ठाकुर जी का श्रृंगार करेगा, कौन से सखियों का वृंद जो है वो राधा रानी का श्रृंगार करेगा, कहाँ से लोग प्रवेश करेंगे, कौन से निकुंज में आज ये करना है, किस दिशा में करना है, कौन पहरेदार बनेगा, कौन स्वागत करेगा, कौन से प्रकार के फूल उधेड़े जाएंगे उनके ऊपर, किस समय भोजन दिया जाएगा, किस समय पेय दिया जाएगा, कि विस्तार रूप में उनकी योजना होती है हर रोज। और हमारा कार्यक्रम का नित्योत्सव 5 से 8, उसके बाद घर जाने का। इनका कार्यक्रम सूर्यास्त को शुरू होता है और भोर तक चलता है, ब्रह्म मुहूर्त तक, इतने घंटे हो गए उसके अंदर, और इतना एलैबोरेट उसमें। और कभी कभी ठाकुर जी कैसे होते हैं, वो एक लीला का आयोजन करते हैं और ठाकुर जी का मूड आता है दूसरी लीला किया जाए उसके अंदर, इमेजिन दिस इज। आप अगर आनंद वृंदावन चंपू पढ़ेंगे ना तो झूला लीला का वर्णन है उसके अंदर, उसके अंदर झूला इतना जोरों से चलता है, इतना जोरों से साइड में घूम रहा है, आगे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, 360 डिग्री में घूम रहा है, जमीन पे गोल गोल घूम रहा है, आकाश में गोल गोल घूम रहा है, हर प्रकार से घूम रहा है। अचानक ठाकुर जी जो है उनको मूड आता है कि रंग खेला जाए, तो कमर में से रंग निकालते हैं और रंग उधरना शुरू करते हैं और पूरे आसमंत में रंग छा जाता है। उसके अंदर होली भी खेल रहे हैं, रंग भी उधड़ रहे हैं, पिचकारे भी मार रहे हैं बीच रात में, वो वृंदा देवी के प्लान के बाहर है लेकिन ठाकुर जी मालिक है, उनको क्या करना है वो कर सकते हैं, व्हाट एवर ही वांट्स, जब चाहे तब कर सकते हैं। ऐसा दिव्य आनंद है भगवान के धाम में, और केवल जीव के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान लीला करते हैं, जस्ट टू एलिवेट एक्सटिंग्विश आवर मिजरीज। ऐसी ब्रजभूमि यहाँ प्रकट करते हैं ताकि जीव का जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो यातना है जिसमें वो तड़प रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाए। केवल इन लीलाओं का स्मरण, चिंतन, कथन, श्रवण करने से सारे दुख मिट जाते हैं, इतना आनंद है उसके अंदर। तो जब आपके घर में 2 इंची ठाकुर जी है ना, ब्रिज में जाएंगे तो 8 फुट के ठाकुर जी मिलेंगे आपको, जिनको झूला झूल रहे हैं वो, लेकिन लीला 8 इंची और 10 इंची और 2 फुट की नहीं होती लीला तो दिव्य है, आपकी चेतना कैसी है वैसे आपको लीला का दर्शन होगा। हमारी चेतना भौतिक है तो हमको 2 इंच की मिलेगी मूर्ति, बोले क्या है मजा नहीं आ रहा कुछ, क्या है रोजी, क्या है इतने ही मूर्ति लेके आए, थोड़ी बड़ी लेके आना चाहिए था अगर आपके मन में भाव ठाकुर जी की अनुकूल है तो इसमें से सारी रात आपको सपने आएंगे अलग अलग रूप के झूला के, ठाकुर जी कितने अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। इसलिए आचार्य हमको ये भगवान के नाम पर श्रद्धा रखने को कहते हैं कि भगवान के नाम के श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक जप करने से ये सारी लीला स्वतः प्रकट होने वाली है। हमको इंतज़ार नहीं करना है कि अभी सावन का महीना आया है तो अभी मेरे जप के अंदर झूला की लीला प्रकट होनी चाहिए, वी कैन नॉट प्लान लाइक दिस कि आज सुबह अभी हरियाली थी आज की सुबह तो आज सुबह मेरे को जप में मेरे झूलन यात्रा प्रकट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जैसी जितनी हमारी श्रद्धा परिपक्व है, जितना हमारा भाव परिपक्व है, जितने हम जितने नम्र हो गए हैं, जितनी हमारी श्रद्धा है भगवान के नाम के ऊपर, तो एक दिन ऐसा आएगा कि स्वतः आपके नाम से, आपके नाम जप से भगवान की लीलाएँ प्रकट होने लगेगी बहुत सुंदर हमारा जीवन है एक्चुअली, इफ़ यू सी, अगर हम एनालाइज करेंगे ना, हमारा जीवन बहुत सुंदर है क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें, हमारे ऐसी चीज़ों की चाबी हमारे को मिल गई है दिव्य से दिव्य चीज, दिव्योत्तम चीज जो है वो हमारे लिए प्रस्तुत है। जब हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, घर का इधर का उधर का दुख झेल रहे हैं, उसके बीच में भी ऐसे दिव्य भक्त वस्तु भगवान ने हमारे लिए प्रकट किए, इसलिए हम बड़े भाग्यवान लोग हैं। हमारा जीवन बहुत धन्य है। जब हम जगन्नाथ को रथ में बैठे हुए देखते हैं तो और जीवन में क्या चाहिए? उनको केवल देखने मात्र से ही मोक्ष होने वाला है, तो और क्या भगवान से मांग सकते हैं? जो केवल रथ में बैठकर आपको दर्शन दे रहे, इसी में आपका मोक्ष समाया हुआ है। व्हाट एल्स वी कैन डिजायर? कोई मांगने की जरूरत नहीं कुछ। हर एक उत्सव, हर एक लीला, हर एक घटना हमारे दिव्य अनुभूति के लिए बनाई गई है, और इसमें ऐसे आनंद का फवारा भी समाया हुआ है। खाली मन हमारा जो है ना, वो दुखों की ओर उसका एंटीना नहीं घुमाना ही नहीं होना चाहिए। हमारा कैसा होता है, हमारा फोकसिंग ऑलवेज ऑन कहाँ तकलीफ हो रही है, उधर अपना मन जाते रहता है। अगर आपको समझो अभी बैठे बैठे अंगूठे में दर्द हो रहा था, आपका मन अंगूठे में जाएगा, उधर ही घूमता रहेगा माइंड, और ठॉक 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 क्यों हो रहा है अंगूठे में? तकलीफ हो रही है, थ्रॉबिंग हेडेक, थ्रॉबिंग पेन हो रहा है। ये एंटीना हमारा बदल के भगवान में हमको स्थित करना है। आपको शक्ति भगवान देंगे, ऐसा मत समझना कि दर्द होते हुए कैसे करेंगे, लेकिन भगवान में श्रद्धा है तो भगवान वो शक्ति देंगे आपको। वहाँ से हमारा मन हटाकर उनके चरणों में वो खुद भी लगा सकते हैं, अगर हमारी इच्छा है तो, श्रद्धा है तो वो लगा देंगे। बहुत दयालु हैं वो। वो जीव को केवल वेट कर रहे हैं कि कब मेरी ओर मुड़ेगा, बस। क्या क्या नहीं करते वो हमारे ध्यान उनकी ओर खींचने के लिए। दुख और कष्ट ज़रूर देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं। हम सोचते हैं कि अरे वो रोकते क्यों नहीं फिर, अगर वो इतना दया करते तो। लेकिन वो हम जब तक अपने दुखों का दर्द नहीं भोगेंगे, तब तक उनकी कीमत भी नहीं समझेंगे ना हमको। लेकिन दुखों का दर्द होते हुए भी हमारे जीवन में उन्होंने इतने फव्वारे छोड़ चुके आनंद के। श्रद्धा होगी तो हम दुख पूर्णता भूल जाएंगे। जैसे कि जब ये देखो, कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस घटना होती है ना, तो उसमें कभी हमको वुंड भी हो जाते हैं, लेकिन वो इंटेंस घटना में कुछ याद नहीं आता। जैसे आपके उसमें बेटी की शादी हो रही है और वो कुछ हो गया, कुछ लग गया, कट गया, कुछ समझ में नहीं आता है। वो सारा आनंद का माहौल समाप्त हो गया, फिर आपको धीरे धीरे दर्द होने लगता है, यहाँ भी कट गया था क्या, अरे वो ये भी कट गया था, वो इधर भी गिर गया था। तो वो कहते हैं ना, वो आनंदाचा भरात, वो दुखों की घटना हम पर परिणाम नहीं करती। जैसे कहीं इसमें नेगेटिव फीलिंग के सिस्टम से कोई रास्ते में मारामारी हो गया हमारी, और बहुत मतभेद भयंकर हो गया हमारी, तो कुछ दर्द नहीं होता उस समय। हम मार रहे हैं, हम पीट रहे हैं, उनको भी पीट रहे हैं, पीटा जा रहा है, लेकिन हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पूरे जोश में रहते हैं। घर में आने का मालूम पड़ता है कि ये भी इधर भी फ्रैक्चर हो गया है और यहाँ पर भी स्वेलिंग हो गया है। उसका मतलब क्या हुआ? जब हम आवेश में जब रहते हैं ना हम लोग, आवेश इंटेंस भावना में, तो हमको छोटी छोटी भावनाओं का अनुभव भी नहीं होता है। मुझे याद है मैंने एक बार एक रिक्शा वाले को एक बॉक्स दिया था दहिसर में, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा हमारे परिवार का छेड़छाड़ किया था उसने, मैंने एक बॉक्स दिया था उसको, उससे एक्चुअली मेरे को ये उंगली में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन मुझे कुछ समझा ही नहीं उधर। घर पे आके जब मैंने महसूस किया तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, लेकिन उधर मेरे को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। उस पेपर दो बॉक्स मैंने उसको दिए थे उसी उंगली के ऊपर। बोलो, इसका मतलब क्या है कि जब हम कुछ आवेश में कुछ अनुभव करते ना, तो छोटे मोटे अनुभव हमको परेशान नहीं करते उस समय। ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अगर हम भगवान के नाम में श्रद्धा रखते हुए चलते ना, तो वो उसमें वो भी एक आवेश होता है, उसके अंदर फिर जीवन के छोटे मोटे दुख हमारे पर परिणाम नहीं करते हैं। और यही दवा है एक्चुअली। हम ये नहीं कहते कि दुख मिट जाएगा आपका, लेकिन दुखों का परिणाम होना कम हो जाएगा आपके ऊपर, एक दिन बंद भी हो जाएगा। इतने सारे दुख होते हुए भी आपको लगेगा अरे क्या फ़र्क पड़ता है, हु केयर्स, इतनी खुशियाँ लुटाई जा रही है हमारे ऊपर, तो उनके अनुभव के अंदर वो हम दुख भी, हम म्हणतो ना मराठी मध्ये अपन डे जेरून टाकतो, वी कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग, सब खत्म कर देंगे उसका, हमको फर्क नहीं पड़ेगा हमको। उसका एक और एक उदाहरण है, समझो आपके हाथ में बोलेंगे, मैं बोलूँगा कि एक लाइन डालो ऐसे हाथ में से 2 इंच की, और मैं आपको कहूँगा कि इस लाइन को न छूते हुए इस लाइन को छोटा बना दो, तो क्या करेंगे आप? उसके साइड में एक बड़ी लाइन डालेंगे। इसका मतलब लाइन नष्ट नहीं हो गई, वो ना लाइन छोटी हो गई है, लेकिन बड़े लाइन के प्रभाव से वो लाइन छोटी दिखाई पड़ने लगेगी आपको, वहीं पर है वो। उसी तरह से इस दुनिया में बहुत दुख हैं, कैसे मिटाएं दुख को, कैसे कम करें, कैसे उसको ख़त्म कर दें, उसके सामने आनंद की लाइन डाल दो कृष्ण भगवान की। जैसे ही कृष्ण भगवान के आनंद की लाइन आप डाल देंगे, तो वो वहीं पर है और लेकिन एकदम छोटी लगेगी आपको, और यहाँ से यहाँ डालेंगे तो वो दिखेगी नहीं आपको। ऐसा है, यही रहस्य है वो। भगवान लोगों को भ्रमित बहुत करते हैं, जो श्रद्धालु हैं उनके लिए सब कुछ रहस्य पकड़ कर देते हैं। जो अश्रद्धालु हैं, देखो इतना तकलीफ है कैसे कम हो गया, कुछ हुआ कम, कुछ किया गया तुम्हारे भगवान ने, क्या हुआ नाम जप करके, ऐसे बोलेंगे वो। भगवान केवल श्रद्धा को रिस्पॉन्ड करते हैं, हमेशा भाव के लिए प्रतिसाद देते हैं। इसलिए द्वारका में कहते हैं कि उन्होंने जब शरीर छोड़ा, मतलब अंतर्धान हो गए, तो एक शरीर वहां पर छोड़ दिया उन्होंने मृत के रूप में, और एक दिव्य शरीर से वो धाम में चले गए। तो लोकनाथ महाराज जी बताते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि जो अश्रद्धालु है, जो भगवान को सामान्य व्यक्ति जानते हैं, उन्होंने इसलिए उनके लिए एक शरीर छोड़ दिया यहाँ पर, जिसका क्रियाकर्म किया गया, जिसको जलाया गया, जिसके अस्थि विसर्जन किया गया, सब कुछ किया गया, श्राद्ध वाद सब कुछ किया गया। तो आपको क्या लगेगा, अरे क्या है, तो ऑर्डिनरी मैन था, देखो उसको शरीर भी जलाया हमने। उनको भ्रमित करने के लिए एक शरीर छोड़ के गए यहाँ पर, वो मृत शरीर, ताकि आपको अगर श्रद्धा नहीं है तो आप वाद विवाद कर सकते कैसे वो दिव्य व्यक्ति है, तो वो ऑर्डिनरी मैन है, देखो उसको शरीर भी जलाया गया हमने। तो भगवान केवल श्रद्धालुओं से और भाव रखने वालों के ही लिए ये सब रहस्य प्रकट करते हैं। नहीं तो अगर अश्रद्धालु लोग अगर नेबर में रहते हैं तो बोलेंगे सातोत्तम पति तो पागल आदमी है, पता नहीं क्या क्या घास लेके आया, इधर उधर घुमाया, उधर क्या कर रहा है, लाइट लगा के कोई दो दो इंच की कुछ मूर्तियों को जो सुनार से लेके आया तो उसको घुमा हिला रहा है, और सब लोग हंस रहे हैं उसके अंदर, नाच रहे हैं, कितनी मूर्खता लगती है ना, इसलिए फुलिशनेस, वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन जिसको श्रद्धा और भाव है उसके लिए दिव्य लीला है भगवान की, सारे अंतरंग रहस्य प्रकट हो रहे हैं उसके अंदर, दिव्य आनंद की प्राप्ति हो रही है, सब दुख मिट रहे हैं, सब दुख जो है वो तुच्छ नजर आते हैं इस इन दिव्य आनंद के सामने। यही हमारा जीवन का भाग्य है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपका श्रद्धा की पूंजी है तो आपका जीवन बहुत धन्य है और भाग्यवान है। श्रद्धा की पूंजी होते हुए हम लोग दुर्लक्ष करके दुखों पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो हमारा दुर्भाग्य हम प्रकट कर रहे हैं, इसको लेकर जन्म लिया है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है, पतित से पतित दुर्भाग्य जीवों को भी परम भाग्य का भेंट देते हैं, और उनको दुखों के बीच में रहते हुए भी दिव्य आनंद का अनुभव देते हैं। श्रीवास के घर पे पुत्र की मृत्यु हुई ना, और चित्रकेतु के घर पर पुत्र की मृत्यु हुई हर्ष शोक के, कि दोनों का रिएक्शन देखो आप कैसे है। चित्रकुतु के पुत्र का देहांत हो गया तो भागवतम में बहुत सारे श्लोक दिए हैं, वो छाती पीटा, वो फिर पत्नी भी रोई, फिर वो भी आक्रोश किया, फिर रोए बहुत, कितने श्लोक भागवत में दिए गए उनके प्रति। और चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है, श्रीवास गए बोले रोने का भी नहीं है, आप रोना हो तो बाहर चले जाओ, भगवान की लीला में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। भगवान रुक जाते हैं, पूछते क्या हुआ बताओ क्या हुआ, फिर सोचते हैं कि अरे ऐसे भक्तों को छोड़कर मैं सन्यास कैसे लूंगा, ऐसे मनोगत मन में सोचते हैं। श्रद्धा का बल है ये, ऐसा नहीं कि ऐसा मत समझो कि श्रीवास पंडित पत्थर दिल थे, उनको पुत्र के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं था, वो चाहते थे जल्दी मर जाए, ऐसा नहीं था सब कुछ। मर जाए तो अच्छा, ऐसा सोचना, सब पर प्रेम था उनका, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम से भरे हुए थे वो, इसलिए वो दुख भी उनको छुआ नहीं। और भगवान ने भी इतना दया किया, उस जीव को वापस बुलाया और दिव्य अनुभूति भी उनको वहाँ पर दे दी, और वो जीव चला भी गया, ऐसा नहीं कि वो उधर रहेगा वापस आके जीवित होकर रहने लगा, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये सब महाप्रभु के कृपा का फल है, जब महाप्रभु के द्वारा दिया गया विधि को आप श्रद्धापूर्वक जीवन में अपनाते हो तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। बहुत भयंकर भयंकर दुखद भरी घटनाओं को साथ में होने होते हुए भी आप दिव्य आनंद की अनुभूति में हंसते हुए रह सकते हो। कृष्ण कॉन्शियसनेस के अनेक अनंत लाभों के बीच में ये एक लाभ है कि दुखों के गहरे सागर में डूबते हुए भी आप दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए रह सकते हो, कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास के रूप में आप रह सकते हो। और ये केवल अभी थियोरी की बात नहीं है, हम लोग भी इसको चीरफाड़ करेंगे इस वाक्य का और समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये चीरफाड़ की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है। अगर आप अनुभव करेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसके अंदर इतनी शक्ति है कि अति भयंकर दुख होने के बाद भी आप परम आनंदी अनंत काल के लिए रह सकते हो, सदा सदैव रह सकते हो। तो आइए इसी भावना से हम इनका झूला झुलाएं और उनको प्रार्थना करें कि आपकी ये हाँ जो दिव्य लीलाएं हैं हमारे हृदय में सदैव स्फुरित होते रहे। सदा स्फुरुक मोर मने, वो वृंदावन रम्य स्थान में लास्ट में नरोत्तमदास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये दिव्य लीलाएं मेरे हृदय में सदैव प्रकट होती रहे। क्या वाक्य हो लास्ट में, सदा स्फुरुत मोरे मने, ऐसे बोलते हैं एंड में कि आपके आपके जो दिव्य लीलाएं हैं जिसमें एक दिव्य कमल है उसके अंदर सब सखियां बैठी हुई है और हास परिहास हो रहा है, गोपियां उनकी सेवा कर रही हैं, इतना आनंद हो रहा है देख के, केवल देख के इतना आनंद हो रहा है कि ये दृश्य मेरे मन में हमेशा प्रकट होता रहे, ये लीला मेरे मन में हमेशा प्रकट होती रहे। ऐसे नरोत्तमदास जी छोटे से सुंदर भजन में गाते हैं। तो हमको भी यही प्रेरणा लेनी है, भगवान के नाम का नित्य दिव्य भाव से जप करते हुए उस रहस्य को खोजना है और उस रहस्य के द्वारा सारे दुखों को मिटाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी को झूला झूलाते हुए हमको प्रार्थना करनी है कि इन दिव्य नामों के जप के माध्यम से आपका गौलोक धाम, आप स्वयं, आपके भक्त, आपकी दिलाएं, ये सारे प्रकट हो जाएं। जहाँ पर भी गटर में बैठे हम लोग फिर भी हमारे लिए प्रकट हो सकती हैं, प्रकट हो जाएं, ये हमको प्रार्थना करते हुए प्रेम से झूला झूलाना है उनके आनंद के लिए, सेवा भाव से, आदर भाव से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का, एनी क्वेश्चन? लास्ट में भगवान ने ये किया, वाली ने भगवान को बाण मारा था ना, तो वाली को तभी भी लगा था कि अब तो अन्याय हुआ मेरे ऊपर ना, अभी आप सामने से आते युद्ध करते तो कम से कम मैं युद्ध करता आपसे, आपने तो पीछे से बाण मारा मुझे, अच्छा नहीं किया भगवान, आप भी क्षत्रिय हो मैं भी योद्धा हूँ और आप पीछे से मुझे बाण मारते हो, ऐसे उन्होंने वाद विवाद किया था। लेकिन जब भगवान ने उनको कृपा किया उनको, तो उन समझ में आया कि भगवान की लीला है। फिर भी भगवान ने उनको एक मौका दिया और वो पारधी यानी कि हंटर के रूप में उनको दोबारा जन्म दिया द्वापर में, और उनके द्वारा बाण का स्पर्श होकर भगवान ने शरीर छोड़ दिया।
नहीं, मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी कि यदुवंश का तो नाश कर चुके थे ना मूसल लीला में भगवान,
हाँ तो
पहले हो चुका था ना,
हाँ तो
भगवान का आप जैसे बोले ना कि उनका अंत्यक्रिया किया गया तब,
तो दूसरों ने किया, यदुकुल ने थोड़ी किया।
अच्छा,
यदुकुल वाले तो गए निकल के,
वही तो मैं भी बोला
कि नहीं, बाकी लोग थे ना बहुत सारे, पांडव लोग थे ना बहुत सारे थे लोग, देखो परीक्षित महाराज थे, बज्रनाभ थे, पांडव लोग थे, बहुत लोग थे, वो भी उनका सगे संगम संबंध है ना, समझो भाई बच्चे और पोते मर गए तो क्या हुआ, बाकी लोग तो है ना, हाँ फिर सब थे। और यस श्रद्धा, श्रद्धा असलेल्या लोकांच्या सत्संगाने वाढते होते आणि वाढते। श्रद्धा जो होते ना, वो जिनके साथ श्रद्धा होती है उनके संग से श्रद्धा प्राप्त होती है। श्रद्धा भी एक दूसरे जीव की हमारे लिए भेंट है, हम लोग अपने आप श्रद्धा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हमको जब कोई जीव श्रद्धावान प्राप्त होता है उसके संग में हम श्रद्धा प्राप्त करते हैं। नहीं तो आपको कैसे पता है कि आपकी माँ है, आपने थोड़ी देखा है जन्म होते हुए अपने आप को, वो तो आप रो रहे थे लेकिन आज आपने डीएनए टेस्टिंग नहीं किया ना, ये आपकी माँ है, लेकिन श्रद्धा है ना आपकी, श्रद्धा आपने अनुभव किया है उसको, इसलिए हम हर बार माँ को पूछने, आप सच में मेरी माँ हो ना तो कलयुग का लक्षण है वो तो लेकिन अधिकतर तो हर बेटा हर बेटी बार बार डीएनए करके प्रूव नहीं करते ना कि मेरी माँ आप सच्ची माँ हो। तो श्रद्धा ऐसी वस्तु है जिससे पर्वत भी पार हो जाते हैं, दुखों के पहाड़ भी पार हो जाते हैं, और सत्य उसके हमें प्रकट हो सकता है। वो नामदेव जी थे, नामदेव जी उनके पीछे एक बार ब्रह्म राक्षस लग गया, ब्रह्म राक्षस मतलब ना 11 प्रकार के भूत होते हैं, उसके अंदर सबसे भयंकर ब्रह्म राक्षस होता है, 11th अति भयंकर होता है वो, तो ऐसा ब्रह्म राक्षस उनके पीछे लग गया, तो नामदेव जी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं अरे भगवान आज ऐसे रूप में आ गए आप क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों ऐसे रूप में आ रहे हो? अरे जिनको हर चीज में भगवान दिखता है, ब्रह्म राक्षस भी भगवान दिख रहा है उसको, तो वो और ब्रह्म राक्षस जो है और अपना तेवर दिखा रहा है, तो वो और जोर से हंस रहे हैं। बोले भगवान आज तो आपने मतलब बेड़ा ही उठा लिया कि मैं मुझे ऐसे ही डराना है, क्यों ऐसा कर रहे हो, प्रकट हो जाओ अभी, बस हो गया। तो और वो जोर जोर से करने लगा। उसके बाद में एक ऐसा प्रसंग आया कि वो ब्रह्म राक्षस के हृदय को फाड़ कर मतलब स्पोर्ट करके भगवान को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्म राक्षस नष्ट हो गया वहीं पर, वही उसका भी उद्धार हो गया। और ये नामदेव की श्रद्धा के वजह से वो ब्रह्म राक्षस के भी अंदर से, क्योंकि वो तो जीवात्मा है ना, वो अल्टीमेटली वो भी जीवात्मा है, उसको ब्रह्म राक्षस का योनि प्राप्त है, तो ब्रह्म राक्षस के योनि के अंदर जो परमात्मा उसको उसके अस्तित्व को विस्फोट करके भगवान प्रकट हो गए और ब्रह्म राक्षस का उद्धार भी साथ में हो गया। तो भगवान को भी ब्रह्म राक्षस के रूप में जो व्यक्ति आया था उसके भी अंदर से प्रकट होना पड़ा उस श्रद्धा के कारण। ऐसी श्रद्धा भक्त की होती है कि भगवान में मजबूर हो जाते हैं। श्रद्धा का बल है ये, श्रद्धा का प्रभाव है। और श्रद्धा होने से क्या नहीं होता है, जो माँ नहीं है वो भी आपको माता का प्रेम दे सकती है, है ना। तो कितने लोग वो गोद में लेते हैं ना बच्चों को, वो कभी अगर तकलीफ नहीं होता कभी पूछते नहीं कि आप सही में मेरी माँ हो क्या। यू डोंट आस्क बिकॉज़ सो मच लव इज गिवन। यशोदा माता को भी कृष्ण भगवान ने पूछा नहीं था कि आप मेरी माँ हो कि नहीं हो, लेकिन जब बच्चों ने चिढ़ाया एक बार तो घर में आके पूछा, इतना चिढ़ाया, इतना चिढ़ाया कि तुम काले हो, तुम्हारी मैया भी गोरी है, तुम्हारे बाबा भी गोरे हैं, वो पूरे तुम्हारा कुल गोरा है, तुम एक ही काले कैसे हो गए? एक्चुअली इसका इतिहास ऐसा है कि तुम एक पेड़ की वो होते ना ढोल ढोल पेड़ का जो छेद में आप एक बार रोते हुए मिले उनको, इतना रो रहे थे, काला बालक रो रहा था, तो उनको दया आ गई, तो ले लेते घर में उसको, ले गए। तो वैसे उन आपको लाया गया है, ऐसे सब लोग बाल बाल उनको इतना चिढ़ाते, इतना चिढ़ाते, इतना चिढ़ाते, इतना बार बोलते कि उनको लगे सत्य है, तो रो रो के घर पे आते हैं। अब पूछते बाद में कि आप सही में मेरी माता हो कि क्या हो, रहस्य क्या बताओ, तो उनको समझाते हो नहीं आप मेरे ही बेटे हो, फिर वो मान जाते हैं। लेकिन उस जब तक बालकों ने मजाक नहीं किया तब तक कोई पूछा नहीं उन्होंने कभी भी एक बार भी, इतना प्रेम के सागर में डुबोते थी वो मैया उनकी। वो सब भेद मतलब उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, बच्चे लोग मजाक कर रहे हैं, मैं आपकी माँ हूँ, और रो रो के समझाया माँ ने उनको, गले लगाया, सो गए। फिर बाद में बड़े होने का मालूम पड़ा उनको कि वसुदेव देव की मेरी माता हैं, और फिर चरणों को छुआ उन्होंने मथुरा जाके। लेकिन फिर भी उनका यशोदा प्रति जो प्रति प्रेम था वो कम नहीं हुआ उनका, कह रहे तो पता चला ये नई माँ पुरानी, मतलब ये तो सच्ची माँ है, ये तो सही माँ नहीं है हमारी, ऐसी माँ है। प्रेम के अंदर जो शक्ति होती है ना वो उस श्रद्धा को कम नहीं कर देती। और कोई प्रश्न है किसी का? तो श्रद्धा के धन को लेकर जियो और अपने जीवन को समृद्ध करो। दुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन कितने लोग इन दुखों के होते हुए भी हंसते रहते हैं, उनको देखो, उनको श्रद्धा का धन है, श्रद्धा की समृद्धि है, उसके आधार पर वो जीवन के चरम आनंद को अनुभव करते रहते हैं। जो जीव के रूप में आपको उपलब्ध है, इस योर प्रॉपर्टी, आपके लिए बनाए गए वो आनंद, वो श्रद्धा की समृद्धि के आधार पर आप उसको अनुभव कर सकते हो, और जीवन को इसमें दुनिया में इस शरीर में जीते हुए धन्य कर सकते हो, उसके अंत में भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इतनी शक्ति है इस मार्ग में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हम लोग भाग्यवान लोग हैं। और अगर हमारे जीवन में और दुखों का अनुभव हो भी रहा है तो आप समझ लेना कि सारे आगे पीछे के जन्मों का दुख जो है वो इसमें भर दिया है भगवान ने, दोबारा नहीं आना है इसके अंदर, 10 बार नहीं आना है इधर, वो 10 बार का और पिछले 10 बार का और इस बार का सारा चीज़ जो है ना होलसेल में इधर डाल दिया है, वो भी कैसा है, मिनिमाइज करके डाला हुआ है टोकन रूप में, लेकिन ज़्यादा दिखता है वो, क्योंकि सब 15 जन्मों का इकट्ठा करेंगे तो इतना बड़ा होगा ना, वो टोकन भी बड़ा दिखता है उसका, इसलिए दुख भोगते हुए ज़्यादा नजर आते हैं भक्त लोग। लेकिन हमको पता होना चाहिए, ये नॉलेज भी हमारे दुखों को कम करने वाला है। अगर आपको नॉलेज है समझो ये कि ये भी टोकन है, तो कितना खुशी लगेगा आपको। हाँ उंगली कट गई आपकी, बोले अरे बाप रे हाथ कटने वाला था आज, तो उसी में ही सुख है, पहला सुख तो उसमें नॉलेज में ही है, और एक्चुअली वो टोकन है, इसलिए भी सुख है कि भगवान की दयालु हमारे लिए खास मिनिमाइज करके टोकन भेजा है उन्होंने। कोई बात नहीं, इतना बड़ा भोगने के बदले टोकन भोजना ही अच्छा है, भोगते रहेंगे, लेकिन भगवान हम आप पर श्रद्धा रखते हैं। सुनने से, श्रवण करने से श्रद्धा प्राप्त होती है। फेथ कम्स बाय हियरिंग। जब हम सुनते हैं, अभी आप अमेरिका गए हो क्या? आपको अमेरिका में श्रद्धा है कि अमेरिका है? क्यों है? आपने सुना है उसके बारे में? कुछ लोग भी वहाँ से आते रहते हैं, आप भी सुनते रहते हैं उनके बारे में। आप चांद पर गए हो क्या? चांद पर विश्वास है आपको? कोई भी चांद पर नहीं गए, बाय द वे ओनली 2-4 लोग गए हैं, पता नहीं वो भी गए हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी चांद है ना। ये सब हम सुनकर समझते हैं चीज़ों को। जैसे हम कभी बचपन से 18 साल तक गांव ही नहीं गए थे, लेकिन घर में हमेशा गांव की बातें होती रहती थी। तो हमको भी ऐसा दिल था कि अभी उड़पी जाएंगे, कभी उड़पी जाएंगे। तो फर्स्ट MBBS में जाने के बाद 18 साल के बाद पहली बार उड़पी गए। लेकिन 17 साल में जब भी हम नहीं गए तो भी उड़पी नहीं था क्या? उड़पी था उधर ही। तो सुनकर हमको विश्वास था कि जाना है एक दिन, वो है जगह ऐसी उड़पी वाली। तो सुनने से, श्रवण करने से श्रद्धा निर्माण होती है हर चीज़ के बारे में। आप बोलेंगे MM मिठाले वाले पास बहुत अच्छे घेवर मिलते हैं अभी सावन के महीने में। अभी तक आपने खाया नहीं है, खाली बोर्ड देखा है MM मिठाई वाला घेवर, घी का मलाई वाला। तो श्रवण करने से पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर जाके अनुभव करते श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। अनुभव के बाद में श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में होता है। तो पहले हमको श्रवण करना चाहिए, थोड़ा सा विश्वास रख के, थोड़ा सा लिटिल बिट सुनना चाहिए। तो धीरे धीरे श्रवण से श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धा का और एक व्याख्या ऐसा है, जो सत वस्तु को धारण करता है उसको श्रद्धा कहते हैं। सत यानी कि भगवान, सत विषय जो है ना, दिव्य वस्तु जो है, जो त्रिगुणातीत है, जो दिव्य है, वो सत वस्तु है। सत वस्तु में जो धारण करता है सत वस्तु को, उसी को श्रद्धा कहते हैं। बाकी श्रद्धा मतलब क्या, वो लड़का मुझ पर प्रेम करेगा, वो लड़की मुझ पर प्रेम करेगी, वो मुझे पिक्चर लेके जाएगी, वो मुझे हलवा खिलाएगी, वो एक्चुअल श्रद्धा नहीं है। क्योंकि सत वस्तु को धारण करने का प्रश्न उसमें आता नहीं है। जहाँ सत वस्तु को धारण करने का विषय आता है, वहाँ पर श्रद्धा विषय शुरू होता है। श्रद्धा विषय ही सत वस्तु से संबंधित है। बहुत सुंदर बात है नहीं? मैंने बहुत 30 साल पहले सुनी थी इस बात को। जो सत वस्तु को धारण करता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।